Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
Ananta Shri Vibhushita Shrutriya Brahmanishtha महामंडलेश्वर श्री स्वामी प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में नमन करते हुए अनंत श्री विभूषित श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ प्रातस्मरणीय महाराज श्री के पावन चरणों में नमन करते हुए आदरणीय आत्मस्वरूप प्रिय मधुबाबू जी तिजोरी वाला जी समस्त भगवान की कथा का श्रवण करने वाले पवित्र आत्मा साधक जन श्रोता जन कठोपनिषद के अंतर्गत द्वितीय वल्ली में आचार्य यम बालक नचिकेता के सामने दो मार्गों को रखकर जिज्ञासु के धैर्य का वर्णन कर रहे हैं। जिज्ञासु का अर्थ है जो परमात्मा को जानना चाहता है, परमात्मा को पाना चाहता है। ऐसे व्यक्ति के जीवन में भय और प्रलोभन के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। जिसके जीवन में भय और प्रलोभन है वो व्यक्ति अपने जीवन के सर्वोच्च लक्ष्य को पाने से वंचित रह जाता है। पाना है लक्ष्य है मंजिल और हम रास्ते से गुजर रहे हैं तो रास्ते में बहुत सारे प्रलोभन आएंगे, लेकिन उन प्रलोभनों में हमें फंसना नहीं है। ऐन्द्रिक आकर्षण होंगे, एक तरफ हमारी आंखें खींचेगी, कान खींचेंगे, जिह्वा खींचेगी और भी बहुत सारी इंद्रियां बाह्य प्रलोभनों में हमें आकर्षित करती होगी, लेकिन प्रलोभनों में फंसना नहीं है। और दूसरी चीज भय भी है। कई बार व्यक्ति को भय लगता है, परमात्मा की यात्रा अज्ञात है, मालूम नहीं वो कब मिलेगा कैसे मिलेगा, और हमें परमात्मा के पथ पर चलने के लिए बहुत कुछ छोड़ना भी तो पड़ता है, छोड़ने का भी तो भय है, त्याग का भी भय है। कई बार आपको ऐसा लगता होगा कि हम एकांत में जाके भगवान का भजन करें, सब कुछ छोड़ दें, लेकिन भय लगता है कि सब कुछ छोड़ के जाने के बाद फिर हमारा क्या होगा, हमारी आजीविका का क्या होगा, हमारी व्यवस्था होगी कि नहीं, रहने का क्या होगा, भोजनादि का क्या होगा, वस्त्रादि का क्या होगा। कई बार आदमी सोचता है बीमार पड़ेंगे तो हमको पानी कौन देगा, ये भी भय है, ये बहुत बड़ा भय है। आदमी सोचता है कि हमें दवाएं कौन देगा, सहारा कौन देगा। बहुत सारे प्रलोभन हैं जो हमें त्याग से वंचित कर देते हैं, हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, और बिना त्याग हम आगे बढ़ नहीं सकते हैं। बालक नचिकेता के लिए आचार्य यम ने बहुत सुंदर बात कही, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत् तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः, श्रेयो ही धीरो ही प्रेयसो वृणीते, प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। आचार्य यम परोक्ष प्रतिपादन कर रहे हैं। परोक्ष इस मंत्र में साक्षात बालक नचिकेता को सामने रखकर परोक्ष प्रतिपादन है और वो सारा परोक्ष प्रतिपादन बालक नचिकेता के ऊपर घटा रहे हैं। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतत, ये दो मार्ग मनुष्य के लिए हैं, योग का मार्ग और भोग का मार्ग, ज्ञान का मार्ग और अज्ञान का मार्ग, ये मनुष्य के लिए है। बहुत सारी योनियां हैं, बहुत सारे जीव हैं, मनुष्य हैं, पशु पक्षी कीट पतंग, लेकिन आचार्य यम कहते हैं केवल मनुष्य के लिए हैं। ये जो विभाजन है योग और भोग का, संसार और परमार्थ का, सत्य और असत्य का, नीति और अनीति का, धर्म और अधर्म का जो विभाजन है, ये केवल मनुष्य के लिए है, क्योंकि मनुष्य में ही ऐसी संभावना है कि वो इस तत्व को समझकर, सत्य और असत्य को समझकर, सत्य के मार्ग के द्वारा अपने जीवन में सत्य को अवतरित कर सकता है, अपने जीवन में परम धर्म परमात्मा को पाने का सामर्थ्य रखता है, और वो केवल मनुष्य है। मनुष्य का जो जीवन है बहुत उन्नतिशील जीवन है, और ये प्रत्येक व्यक्ति का अपना अनुभव भी है, मनुष्य जाति ने कितना विकास किया है। मनुष्य में तत्, और ये मनुष्य शब्द का प्रयोग करके साहस हमारे भीतर निर्मित कर रहे हैं। ये चीज केवल मनुष्य जाति के लिए, धर्म केवल मनुष्य जाति के लिए है। तौ संपरित्य, इसीलिए ये मनु अवबोधने धातु से मनुष्य बनता है। ये जो मनु शब्द है, मन शब्द है, मनुष्य शब्द है, ये सारे एक ही धातु से बनते हैं, और उस धातु का अर्थ है अवबोध माने ज्ञान। आपका मन भी उसी धातु से बनता है, मन माने ज्ञान, मनुष्य भी उसी धातु से बनता है, मनु भी बनता है उसी से। ज्ञान प्रधान, मनुष्य शब्द का प्रयोग करके उन्होंने कहा कि मनुष्य ज्ञान प्रधान, और इसी के कारण संपरित्य अच्छी प्रकार से जानकर, अलग अलग कर, हमें जिस मार्ग पर चलना है और हमें जिस मार्ग पर नहीं चलना है, दोनों चीजें जानना है। जैसे क्षीर नीर विवेक बोलते हैं ना, पक्षी राजहंस पक्षी जैसे क्षीर नीर का विवेक करता, जान लेता है ये दूध कितना और पानी कितना, और वो दूध दूध पी जाता है, पानी पानी छोड़ देता है। इसी को बोलते संपरित्य, विविनक्ति धीरा, विविनक्ति माने अलग अलग जानकर उस मार्ग का चयन करते हैं, श्रेय मार्ग का चयन करते हैं। लेकिन यह शब्द का प्रयोग किया धीरा, ये सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। हमारे जीवन में तीन चीजें होती हैं, प्रथम ज्ञान, उसके बाद विचार, विवेक वैराग्य और समाधि संपत्ति के अंतर्गत आप एक उपरति ले लेते हैं। आप सबसे पहले रखते हैं विवेक। विवेक का अर्थ क्या है? विवेक का अर्थ ज्ञान है। विवेक माने जानना है, अच्छी प्रकार से जानना, सत्य क्या है, असत्य क्या है, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, आत्मा क्या है, अनात्मा क्या है, अच्छी प्रकार से जानना। सत्संग हमें विवेक में ले जाता है, श्रवण हमें विवेक में ले जाता है, और विवेक ज्ञान है, विवेक बोध है, लेकिन वो सही का बोध है। और विवेक के बाद आता है वैराग्य का क्रम। जहां विवेक होता है अपने आप व्यक्ति के जीवन में वैराग्य आ जाता है, और ये वैराग्य इच्छा है। वैराग्य इच्छात्मक भाव है, वैराग्य छोड़ने का नाम नहीं है। छोड़ने की जो इच्छा है, प्रबलतम इच्छा, उसको वैराग्य बोलते हैं। हमने जाना विवेक से सत्य और असत्य, आत्मा और अनात्मा, अच्छा और बुरा जाना, विवेक में जाना, और उसके बाद फिर इच्छा का उदय। एक शास्त्र का नियम है हमारे जीवन में, जानाति इच्छति प्रयतते प्राप्नोति। जब हमारी इंद्रियां बाहर जाती हैं या कोई शब्द सत्संग के रूप में हमारे कान में प्रवेश करता है, तो वहां सबसे पहले हमारे मन में ज्ञान की एक रेखा उदित हो जाती है। जैसे हम श्रवण करते हैं वहां ज्ञानोदय होता है, और उस ज्ञान के बाद फिर इच्छा का निर्माण होता है, चाहने लगते हैं। बिना जाने बिना ज्ञान हमारे मन में चाह का उदय नहीं होता है। इच्छा का उदय होने के लिए पहले ज्ञान की आवश्यकता है। जैसे हम टीवी देखते हैं, ये टीवी क्या करता है, हमें ज्ञान में ले जाता है। ठंडा माने कोका कोला, ठंडा माने कोका कोला, वो आपको सुनाता जाएगा ठंडा माने कोका कोला, आपको इतना इतना सुनाता है, इतना सुनाता है कि आपके मन के ज्ञान को स्थिर कर देता है। वो अवचेतन मन में वो बात बैठ जाती है ठंडा माने। अब वो दूसरा कोई ठंडा आ भी जाए तो भी आपके मन का भाव उसको स्वीकृति नहीं देगा। ठंडा माने क्या होता है, हजारों बार आपने सुना, और वो ज्ञान आपको इच्छा में ले जाता है। फिर आपने सुना, सुनने के बाद ज्ञान हुआ, और वो प्रबल ज्ञान हुआ, प्रबल वो आपकी स्मृति बनी, आपकी स्मृति धारा बनी, और उसके बाद फिर आपको इच्छा में ले जाएगा, वो आप पीना चाहेंगे। बहुत बार सुना है ना, बहुत बार सुना है, तो आपके मन में इच्छा पैदा होगी कि हम भी ठंडा पिए। लेकिन ठंडा पिए तो कौन सा पिएंगे फिर, क्योंकि आपके स्मृति में वही बैठा दिया गया, आपके स्मृति में वही बैठा दिया गया, और आपको जैसे ठंडा पीने की इच्छा होगी, तत्क्षण आपके सामने क्या आएगा, कोका कोला, इच्छा पैदा हो। और इच्छा पैदा होने के बाद इच्छा आपको पुरुषार्थ में ले जाती है, श्रम में ले जाती है, परिश्रम में ले जाती है, क्रिया में ले जाती है। इच्छा पैदा हो जाए और आदमी शांत बैठे, ये संभव नहीं है। इच्छा का ही अर्थ है चाहिए, पाना है। इच्छा पीड़ा है, इच्छा एक वेदना है, अंतर मन की पीड़ा है, खालीपन है। जैसे इच्छा पैदा हो जाती है तो हम खाली हो जाते हैं, हमें ऐसा लगता है कि माने बिल्कुल खाली हो गए हम, अब भरना है उसको। यदि आपको भूख लग जाए ना, भूख का अर्थ क्या है, खाली होने का ही तो भाव है। जैसे आपको भूख लगती है तो पेट खाली खाली मालूम पड़ता है। इच्छा माने अपूर्णता है, अपूर्णता की गहरी जो वेदना है उसी को तो इच्छा बोलते हैं। अपूर्णता की गहरी वेदना है और उसको पूरा करने का भाव ही पुरुषार्थ है। अब हम कोशिश करते हैं वो पेट का जो खालीपन है उसको भरना है, अब पुरुषार्थ करेंगे। वेदना है, वो वेदना हमें पुरुषार्थ में ले जाती, केवल चाह हमें पुरुषार्थ में नहीं ले जाती है। आप चाह रहे हैं लेकिन चाह में वेदना ना हो, तो चाह में वेदना ना हो तो वो चाह हमें पुरुषार्थ में नहीं ले जाती है। चाह में वेदना हो, पुरुषार्थ अनिवार्य हो जाता है फिर। और पुरुषार्थ जब अनिवार्य करेंगे तो आपको मिलेगा, वो जो आप चाहते वो चीज मिलेगी, उसी को पाना बोलते हैं। यह हमारे जीवन का क्रम है। ये चार सूत्र दिए शास्त्र ने, पहले संग और उसके बाद ज्ञान, ज्ञान के बाद इच्छा, इच्छा के बाद पुरुषार्थ और पुरुषार्थ के बाद पाना। अब यहां पर भी आप जोड़ना, आध्यात्मिक दृष्टि से आप सत्संग करते हैं, सत्संग के बाद ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, संसार का ज्ञान, बहुत सारी चीजों को आप जान लेते हैं और वो जानना आपको धीरे धीरे पाने की इच्छा में ले जाता है। सत्संग के बाद जो ज्ञान है ना, उसी को विवेक बोलते हैं और वो विवेक आपके मन में पड़ा रहता है और धीरे धीरे आपके मन में पाने की इच्छा पैदा करता है, छोड़ने की इच्छा पैदा करता है। फिर आप सोचने लगते हैं, अरे ये चीज ठीक नहीं है। सत्संग से आपको मालूम होता है कि ये चीज हमारे जीवन में ठीक नहीं है। और जब ठीक नहीं है ये बात मालूम पड़ जाती है तो उसके छोड़ने के बारे में आप सोचने लगते हैं। फिर आप सोचने लगते हैं, आपको मालूम पड़ी कि ये चीज बहुत अच्छी है, उसको पाने के बारे में आप सोचने लगते हैं। अच्छा, ये दैवी संपदा है तो दैवी संपदा को हमको पाना है। दया, करुणा, विवेक, बहुत सारी चीजें, सहनशीलता, तितिक्षा, इन सारी चीजों को हमको पाना है। अभयम सत्व संसिद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति ही दानम दमश्च योगश्च। आपको लगेगा कि सारी चीजें मेरे अंदर आनी चाहिए। जैसे जैसे सत्संग करेंगे वैसे विवेक उदित होगा और वो विवेक आपको ले जाएगा, पाने की इच्छा में ले जाएगा, छोड़ने की इच्छा में ले जाएगा। कई बार आदमी को लगता है, अरे ये तो हमारे मन का दुर्गुण है, हमारे जीवन में ये कमी है भाई, लोगों को मालूम न पड़ती हो। बहुत सारे ऐसे दुर्गुण हमारे जीवन में होते हैं जो दूसरे को मालूम नहीं होते, केवल अंतर मन के विचार होते हैं। कई बार अंतर मन के विचार हमारी क्रियाओं में उतर आते हैं, वो दुर्गुण कई बार हमारे बोलने में उतर आते हैं, हमारे आचरण में प्रकट हो जाते हैं और कई बार वो प्रकट नहीं होते, स्व संवेद्य अपने को मालूम पड़ते हैं। आप कितने भी बड़े ईमानदार आदमी को पूछना, आप बहुत अच्छे हैं, बोलेगा नहीं। आप ऐसा मत कहो, मेरे में बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं, वो कमियां बाहर नहीं आ रही हैं, प्रकट नहीं है, लेकिन बहुत सारे दुर्गुण हैं, लेकिन मैं चाहता हूं वो दुर्गुण मेरे मन के निकल जाए, मैं निर्मल हो जाऊं, मैं विमल हो जाऊं। इसी को तो वैराग्य बोलते हैं। आप अपने दुर्गुणों का त्याग करना चाहते हैं, ये भी वैराग्य है। हम अपने विकारों को त्यागना चाहते हैं, ये भी वैराग्य है। त्याग केवल भौतिक पदार्थों का ही नहीं होता है, त्याग का अर्थ ये नहीं है हमने पैसा छोड़ा, त्याग का अर्थ ये नहीं कि हमने मकान छोड़ा, त्याग का अर्थ ये नहीं कि हमने वस्त्र छोड़ा, त्याग का अर्थ ये भी है और बहुत गहरा अर्थ है ये। त्याग का बहुत गहरा अर्थ है कि हम अपने मन के दुर्गुणों को छोड़ना चाहते हैं, ये बहुत बड़ा त्याग है। हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारी भावनाओं में बहुत सारे दुर्गुण भरे पड़े होंगे और उन दुर्गुणों को त्याग करने की जो इच्छा है ये भी वैराग्य है, उसको भी त्यागना है। और आश्चर्य की बात, बाह्य त्याग की अपेक्षा आंतरिक त्याग ज्यादा श्रेष्ठ है और बहुत आवश्यक भी है। मान लो आपने बाह्य पदार्थों का त्याग कर दिया है, आपने त्याग दिया अपना घर, त्याग दिया बहुत सारी आवश्यकता की चीजें और जाकर के वन में बैठ गए, लेकिन वहां जाने के बाद आपका घर याद, आपकी धन संपदा याद आने लगे, जो आपने छोड़ा वो चीजें याद आने लगी। कई बार आदमी त्यागता है लेकिन उस त्याग की भावना को त्याग नहीं पाता है। आदमी छोड़ता है लेकिन वो छोड़ने की भावना को भी छोड़ नहीं पाता है। इसलिए आदमी लिखता है, मैंने ये चीजें छोड़ी, हमने छोड़ा लेकिन छोड़ने को नहीं छोड़ा, और वो भी एक उपद्रव बन जाता है। बाह्य चीजों का त्याग करने के बाद भी यदि हमने अंतर मन के विकारों, दुर्गुणों, जलन, प्रतिशोध, हिंसा आदि कुच्छित भावों का त्याग नहीं किया है तो हमने कुछ भी नहीं त्याग किया है। इसलिए इनको छोड़ने की जो इच्छा है, नारायण इसी को वैराग्य बोलते हैं, छोड़ने की इच्छा। अभी छोड़ा नहीं है, केवल हम चाहते हैं, इसको वैराग्य बोलते हैं। छोड़ने का नाम वैराग्य नहीं, छोड़ने की तीव्र जो इच्छा है उसका नाम वैराग्य है। इसलिए वैराग्य इच्छात्मक भाव है, और इच्छा हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इच्छा पैदा हुई तो इच्छा क्रिया में उतरेगी, जरूर उतरेगी। यह हमारे जीवन का अपना अनुभव है। आप जो चाहते हैं ना, वो क्रिया में उतार लेते हैं। आप छोड़ना चाहते हैं तो आप जरूर छोड़ेंगे, वो छोड़ने की चाह आपके आपको त्याग में ले जाएगी, और उसी को उपरति बोला है शास्त्र ने। उपरति शब्द का प्रयोग, उपरति माने आपने छोड़ दिया है, अब आप छोड़ना चाह नहीं रहे हैं, आपने छोड़ दिया। जैसे उदाहरण में ज्ञानेश्वर महाराज जी ने ज्ञानेश्वरी में एक बहुत सुंदर दृष्टांत के द्वारा इस बात को प्रदर्शित किया है। आप बहुत भूखे हैं, आपके सामने भोजन रखा है, बहुत सुंदर भोजन आपके सामने आया है, आप जैसा चाहते वैसा ही भोजन आपके सामने आया है, आप खाने जा रहे हैं, और उसी समय किसी ने आके बोला कि इस भोजन को मत खाना, इसमें जहर मिला हुआ है। अब आप उस भोजन को खाएंगे कि नहीं? आपको कोई बोले कि हम 1,00,000 रुपए दक्षिणा देंगे आपको, हाँ बोलेंगे भैया 1,00,000 क्या, 10,00,000 भी, 1,00,00,000 भी देंगे तो भी हम नहीं खाएंगे, क्योंकि इसके अंदर क्या मिला हुआ है, जहर मिला हुआ है। उन्होंने कहा कि जैसे थाली छोड़ के चला जाता है आदमी, ऐसा लिखा है उन्होंने, और ये भी लिखा है कि आप वैराग्य को भगाना चाह रहे हैं तो भी वैराग्य आपके पीछे पड़ के आपके पास आ जाएगा। वैराग्य दवड़िता पाठी लागे, ऐसा एक वाक्य उनका। आप कितना भी उसको भगाओ, आपने जान लिया ना, सत्य का बोध हुआ आपको, आपको मालूम पड़ा असत्य और सत्य, मालूम होना चाहिए, ध्यान देना आप, मालूम नहीं होता है, मुश्किल बात ये है। जिसको मालूम होना कहते हैं ना, वो भी मालूम होना नहीं होता है। हम कहते जरूर हैं कि मालूम है, लेकिन वो मालूम होना भी मालूम होना नहीं होता है। मैं पूछता हूं आपको, या तो सत्संगी लोग हैं आप, क्रोध करना बुरा है, ये कितने लोगों को मालूम है? क्रोध करना बुरा है ये सबको मालूम है, लेकिन जो क्रोध करते हैं उन लोगों को मालूम है कि नहीं? उनको भी मालूम है। हम मालूम भी हैं हमें, और हम क्रोध भी कर रहे हैं, तो इसका अर्थ क्या है? मालूम है कि मालूम नहीं है? आप इसको क्या बोलते हैं? कोई आदमी डाल के ऊपर बैठ के डाल काट रहा है, और उसको किसी ने बोला कि भैया डाल के ऊपर बैठ के डाल काट रहे हो लेकिन तुम गिर जाओगे, वो आदमी बोलता है मुझे मालूम है। वो आदमी बोलता है मुझे मालूम है, वो देखने वाला आदमी बोलता है भैया वो तो बहुत ऊंचाई पर हो तुम, और ऊपर से तुम गिरोगे तो बचने की संभावना नहीं है, और बच भी जाओगे तो तुम्हारे हालात अच्छे नहीं होंगे, टांग भी टूट सकती है, कमर भी टूट सकती है, तुम लूले लंगड़े भी हो सकते हो,
तो उस समय आदमी बोलता है ये भी मुझे मेरे को मालूम है। ऊपर से गिरने के बाद वो मर भी सकता है, ये भी उसको मालूम है। टांग टूट सकती है, ये भी मालूम है। और उसके बाद भी काट रहा है, तो आप उसको क्या बोलोगे? मालूम है, ऐसा बोलेंगे कि मालूम है, ये उसको मालूम नहीं है। ध्यान देना, उस आदमी को यही नहीं मालूम कि मेरे को मालूम है भी कि नहीं है। वो नहीं मालूम होने को ही मालूम होना कह रहा है। एक सामान्य छोटा सा अनजान शिशु भी यदि उसको पता हो जाए कि इस रास्ते से गुजरने के बाद मैं गिर जाऊंगा, वो वहां से बचेगा। और वो मालूम होने के बाद भी दौड़ रहा है, इसका मतलब उसको मालूम नहीं है। वो जिसको मालूम होना कह रहा है वो मालूम होना नहीं है। वस्तुतः हम अज्ञान को ही ज्ञान कहते हैं, नासमझी को ही समझदारी समझते हैं। मालूम हो जाए, ज्ञान का स्वभाव है। मालूम हो जाए, वो मालूम होना हमारे क्रिया में उतर आता है, ज्ञान हमारा आचरण बनता है। ये स्वभाव है, ज्ञान का स्वभाव है, ज्ञान हमारा आचरण बनता है। आपको मालूम है ये नंगा तार है बिजली का, आप छुएंगे उसको? आपको कितना भी कोई प्रलोभन दे, आपको मालूम है इसमें करंट है, बहुत हाई वोल्टेज वाला, आपको पता है ये तो पकड़ने के बाद नहीं छोड़ने वाला है, पकड़ोगे, मालूम हो गया, ज्ञान का स्वभाव है। आपको मालूम हो गया छत से गिरेंगे, आप वहां से बचेंगे, बचना ये ज्ञान का स्वभाव है। निवृत्ति ज्ञान का स्वभाव है, प्रवृत्ति ज्ञान का स्वभाव है। जानने के बाद भी हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही, सत्य को जानने के बाद भी प्रवृत्ति नहीं है, इसका मतलब अभी सत्य का पता नहीं है। और जो अपने को मालूम हो रहा है कि पता है, वो पता नहीं है। अपने को मालूम है क्रोध करना बहुत बुरा है, आसक्तियां बहुत बुरी हैं, विकार बहुत बुरे हैं, और उसके बाद भी प्रवृत्ति हो रही है, वहां से निवृत्ति नहीं घट रही है, इसका मतलब कि सत्य का बोध नहीं है। एक बार पता हो जाए और वो पता होना हमारे जीवन में न उतर आए, ऐसा संभव ही नहीं है।